ओम शांति। आदरणीय उर्मिला दीदी जी का सभी एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी जी, आप एक सरल और सिंपल व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। आप ईश्वरीय ज्ञान में 81 से पदार्पण करने के पश्चात 85 से ही आपने समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देनी शुरू की। आप लौकिक रीति से इंग्लिश में एमए होने के पश्चात आपने विशेष रूप से बाबा के इस महायज्ञ के जो ज्ञानामृत पत्रिका है उनकी संपादिका हैं, साथ ही हरियाली मैगजीन की भी सह संपादिका हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका के साथ साथ कई अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों का भी भाग लेकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आप आध्यात्मिक अभियानों का भी संचालन करते रहते हैं, साथ ही आप बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित ऐसे आपदा के क्षेत्र में भी विशेष राहत शिविर में भाग लेकर बहुत सुंदर अनुभूतियाँ उपलब्ध किए हैं। साथ ही आपने देश के अलावा विदेशों में भी भ्रमण करके अनेक आत्माओं को परमात्मा संदेश प्राप्त कराया है। आपने पुस्तक भी रचना की है, अमृत संचय भाग 1, 2, 3। साथ ही आप तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि बहुत मूल्यवान विषयों पर अपना वक्तव्य रखते हैं। और साथ ही हम सब ज्ञानामृत में आपको बहुत सुंदर रीति से हर महीना लिखते हुए सुनते हैं, पढ़ते हैं और लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे अनेक प्रतिभाशाली आदरणीय उर्मिला दीदी जी को आज हम सुनेंगे। आपका विषय है निरंतर एक रस पुरुषार्थ कैसे हो। आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारा जो विषय है उसमें हम देख रहे हैं तीन मुख्य बातें हैं। एक है निरंतरता, दूसरी है एक रस स्थिति और तीसरा है तीव्र पुरुषार्थ। तो इन तीनों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तीव्र पुरुषार्थ की। एक बार बाबा ने बच्चों से पूछा था कि तीव्र पुरुषार्थ क्या है, तो किसी बच्चे ने उत्तर दिया कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमें देख करके और करेंगे, इस बात की निरंतर स्मृति रहे, यही तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा नहीं, ये तो बहुत मोटा रूप है। अभी चूंकि आप संपूर्णता के निकट पहुंच रहे हो तो आपको इससे भी सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है, और वो सूक्ष्म पुरुषार्थ ये है कि जैसे संकल्प मैं करूंगा वैसा ही वायुमंडल बनेगा, मेरी वृत्ति बनेगी और वैसा ही प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा। तो तीव्र पुरुषार्थ क्या हुआ? जैसे संकल्प मैं करूंगा वैसा वायुमंडल बनेगा, तो मुझे ऐसे संकल्प करने हैं जिनसे शक्तिशाली, पॉजिटिव, पवित्र वातावरण बने, वायुमंडल बने। एक और मुरली में बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ का आधार है अभी अभी सोचा और अभी अभी किया। सोचने और करने में गैप नहीं होना चाहिए। हमने कोई बात सोची, करेंगे 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 सोचते रहे और करने में 6 महीने लगाए, साल लगाए, तो बाबा ने कहा वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, वो ठंडा पुरुषार्थ। अब हम बात करेंगे एक रस स्थिति की। एक रस का मतलब क्या है? एक बाबा में सारे रस, एक बाबा में सारे संबंधों का रस, सारे पदार्थों का रस, मतलब बाबा ही संसार। अब बाबा तो बिंदु है, अब बिंदु में इतने रस कैसे हो सकते हैं? एक बिंदु संसार कैसे हो सकता है? वैसे तो बाबा बीज है और सारी दुनिया उस बीज की ही रचना है, तो दुनिया में जो कुछ है वो पहले बीज में है। लेकिन पहले हम बात करते हैं सर्व संबंधों का रस। तो जब हम आत्मा बन करके उस बीज रूप बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो आत्मा भी तो उस समय बीज रूप है, तो बीज रूप आत्मा को उस बीज रूप से पिता का प्यार भी मिलता है, माँ का जिसको हम कहते हैं शीतल गोद भी मिलती है, शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा का भी अनुभव होता है, और सतगुरु द्वारा कैसी गति सदगति मिलती है वो भी उस बीज से अनुभूति होती है, भाई कैसे संरक्षण प्रदान करता है, सखा कैसे बहलाता है, और साजन या सजनी से कैसे खुशी आनंद मिलता है, पुत्र से कैसे वात्सल्य मिलता है, ये सब के सब उस बीज में भरे हुए और एकदम प्योर और एकदम निस्वार्थ रूप में भरे हुए। हम जिस भी संबंध का संकल्प करेंगे उसी संबंध का रस उस बिंदु से आना चालू हो जाएगा और आत्मा में भरेगा। और बाबा ने कहा जिसने संगम युग में सर्व रस लिए वो पूरे कल्प रसों से भरपूर रहेगा, और अगर संगम में कोई रस मिस हो गया तो वो कल्प भर भी रस मिलेगा नहीं, क्योंकि बीज तो अभी पड़ता है, भाग्य की रेखा तो अभी बनती है। तो ये संबंधों के रस हो गए। अब हम बात करते हैं, हम जीवित इंसान हैं, हमें चीज़ें चाहिए, पदार्थ चाहिए, तो देखने में आता है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमें बिना मांगे हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें मिलती, चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी स्थूल चीज हो। बाबा की याद में रहो, बाबा ने कहा आप केवल कनेक्शन जोड़ के रखो, आपको बिना मांगे बाबा सब चीज़ें प्राप्त करवाता है। और ये हम सबका अनुभव है कि कैसे बाबा हर बच्चे की आवश्यकता पूर्ण करता है। और तीसरा है जो इंद्रियों के रस हैं, देखना सुनना स्पर्श। लेकिन जब हम आत्मा बन जाते हैं तो इंद्रियों के रसों से तो परे चले जाते हैं, इंद्रियां तो उस समय सुषुप्त हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, किसी इंद्री की कोई डिमांड ही नहीं रहती, और आत्मा अकेली ही अतिंद्रिय सुख में डूबती है जो इंद्रियों के सुख से कई गुना ऊंचा सुख है, निरंतर सुख है, एक रस सुख है, क्योंकि इंद्रियों के सुख में उतार चढ़ाव है, वो निरंतर नहीं है। आँख को कोई चीज़ नहीं मिली तो सुख गया, कान को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो कान का सुख गया, लेकिन परमात्मा पिता जो अतिंद्रिय सुख के भंडार हैं वो तो सदा ही अवेलेबल है। तो एक रस मतलब हर रस, हर संबंध, हर प्राप्ति, एक बाबा से कोई व्यक्ति याद ना आए, कोई स्थान याद ना आए, कोई धन पैसा याद ना आए, उसको हम कहते हैं एक रस स्थिति। तो जब मन एक के रस में है तो डावा डोल होना, उतार चढ़ाव होना, द्विधा द्वंद्व होना, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और फिर तीसरी चीज़ की हम बात करेंगे, वो है निरंतरता, अर्थात निरंतर। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली लगभग 800-900 किलोमीटर है, और अगर हम एक रस चलें, निरंतर चलें, तो 15 घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारी यात्रा के बीच में अवरोध है तो हमें दुगना समय भी लग सकता है, तिगना समय भी लग सकता है, और अगर अवरोध बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता हम पहुँचे ही ना। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से अवरोध आते हैं, उनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, संगम युग चलने और चलाने का युग है, संगम युग में रुकना नहीं है, इसी में आपका और सर्व का कल्याण है। और अब तो बाबा कहते हैं संगम युग चलने का नहीं, उड़ने का युग है, उड़ो और उड़ाओ। इस चलने में कई बाधाएं आती हैं, तो चलने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, यात्रा में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को हम कैसे हटा सकते हैं। हम भीतर के नेत्र से विजुअलाइज करेंगे कि मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे हैं और हम दिल्ली जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला अवरोध क्या आता है। यात्रा में सबसे पहला अवरोध आता है साइड सीन, कोई ना कोई सुंदर दृश्य अचानक दिखता है और गाड़ीवान गाड़ी रोक लेता है, या फिर सुंदर झरना है, पार्क है, या कोई होटल है उसके ऊपर लिखा है खाने की ये चीज है और हम गाड़ी को रोक लेते हैं, यात्रा रुक जाती है। आध्यात्मिक मार्ग में साइड सीन कौन से हैं, इंद्रियों के आकर्षण। अगर हम किसी भी इंद्रिय के आकर्षण में उलझ गए तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है, हमारी निरंतर की जो यात्रा है वो रुक जाती है। निरंतरता बहुत आवश्यक है। निरंतरता क्यों आवश्यक है? जैसे मान लीजिए हमने कोई पौधा बोया, बीज बोया, उसमें 4 दिन पानी डाला, वो अंकुरित हो गया, उसके बाद पानी डालना बंद कर दिया, तो वो थोड़ा सा जो ऊपर आया था ना, वो मुरझा जाएगा, ऊपर से सूखने लगेगा। 4 दिन के बाद फिर थोड़ा पानी डाला, फिर उसमें थोड़ी हरियाली आएगी, फिर पानी डालना बंद कर दिया, तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो हमने आज खूब अच्छे से योग लगाया, अमृत वेले उठे, लगन से उठे, बड़ी अच्छी अनुभूति की, बहुत खुश हो गए, आज हमारा योग बहुत अच्छा लगा, आज हमारा योग बहुत अच्छा लगा। लेकिन दिन में क्या किया? दिन में ढीले हो गए, दिन में किसी आकर्षण में फंस गए, या हमने बहुत सोया, या हमने बहुत खाया, या हमने बहुत बातें की, या हमने बहुत दुनिया की चीज़ें देखी, घूमे, और फिर हम अपने स्वरूप से हट गए, तो क्या हुआ? जो अमृत वेले अनुभूति की थी उसका नशा ही गया। तो निरंतरता चाहिए, अमृत वेले भी नशा, दिन में भी नशा, शाम को भी नशा, रात को सोते भी नशा, हर समय रूहानी नशा चढ़ा रहे। जैसे हम अपने भोजन को पोषण देते हैं, शरीर को पोषण देते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। मान लीजिए हमने सुबह खाया, फिर दोपहर नहीं खाया, रात को नहीं खाया, तो क्या होगा? शरीर कमज़ोर होगा। और अगर हम 8-10 दिन ऐसा करें तो इसको चक्कर आने लगेंगे, इसमें कई तत्वों की कमी हो जाएगी। तो निरंतर भोजन देने से शरीर की ग्रोथ होती है, पोषण होता है, इसकी ताकत बनी रहती है और ये सब काम करने योग्य रहता है। तो इसी तरह से आत्मा की भी शक्ति बनी रहे उसके लिए निरंतरता चाहिए। तो हम बात कर रहे थे साइड सीन की, हमारी यात्रा में हम चले और एक साइड सीन आ गया, कोई ना कोई इंद्रिय का आकर्षण। और आज की दुनिया तो में तो हम देखते ही हैं कि जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है आँखों के लिए। हमने मोबाइल खोला, उसमें कोई सीरियल है, कोई फिल्म है या कोई समाचार है, उसके नीचे की लाइन पढ़ी, इंटरेस्टिंग लगी और उसको देखना चालू किया, और कब घंटा और दो घंटा और तीन घंटा गया पता ही नहीं पड़ा। और उसके बाद होश में आए तो जो देखा था वो बुद्धि में घूम रहा है, मुरली भी उड़ गई, योग का अनुभव भी उड़ गया और 6-8 घंटे उसी में चले गए तो यात्रा रुक गई, पुरुषार्थ रुक गए। अब जो मन में भर गया उसको डिलीट करने में लगे, नहीं ये भी ठीक बात नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो मन में आएगी तो सही। तो पहले भरने में 3-4 घंटे लगाए, फिर डिलीट करने में कई घंटे लगाए। कानों का आकर्षण, जीवा का आकर्षण, कोई छुट्टी का दिन है, हमारे पास बहुत समय है या घर में कम काम है, हम योजना बनाते हैं कि हम बैठ के हम योग करेंगे, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। इतनी देर में या तो हमें खुद ही स्मृति आ जाती है, किसी का फोन आ जाता है, चलो आज तो ये वाली चीज बनाती। अब जीवा के 2.5 सेकंड के स्वाद के लिए, जीवा पे स्वाद 2.5 सेकंड ही टिकता है, उसके बाद या तो हम उसको निगल जाते हैं और या लार के साथ मिलकर के स्वाद खत्म हो जाता है। और हमने वो चीज बनाने की योजना बनाई, बाजार से सामान खरीदा, रेसिपी देखी, बनाने में लगे, खाया, उसी में 4-5 घंटे चले गए, उसकी चर्चा में कुछ समय चला गया। तो हमारे पास कुछ टाइम था, हम कुछ नई अनुभूति कर सकते थे, कुछ लिख सकते थे, कुछ पढ़ सकते थे, किसी को ज्ञान सुना सकते थे, किसी की अवस्था बना सकते थे, लेकिन वो जीवा की भेंट चढ़ गया। तो कोई भी देखने का, सुनने का, खाने का, स्पर्श का आकर्षण या फिर आराम का, बहुत दिन हो गए आज तो 5-6 घंटे सोएंगे, अरे सारी जिंदगी तो सोते रहे, सोई सोई पेट नहीं भरा, अभी भी हम सोने की योजना बनाते हैं। तो इस प्रकार से शरीर और इंद्रियों में हम उलझ गए और हमारी यात्रा रुक गई, फिर हमें पश्चाताप होता है, लेकिन गया वक्त फिर हाथ ना आए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या करें, इंद्रिय जीत बनी, ऐसा नहीं जब इंद्रियां आकर्षित करती हैं तब इंद्रियों की तरफ ध्यान दें। बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है कि पहले अपनी तीनों सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर अटेंशन दो, और उसमें भी सबसे अधिक चंचल है मन, मन से घड़ी घड़ी बात करो, मन की घड़ी घड़ी चेकिंग करो, मन तुम कहाँ हो, क्या सोच रहे हो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि और कुछ मत करो, बस मिलान करो कि ये संकल्प बाप समान है। तो मन तुम क्या सोच रही हो, क्या वो बाप समान है, क्या वो ब्रह्मा बाप ने किया, क्या वो शिव बाप कहते हैं, बस इतना मिलान करो। ब्रह्मा बाप की दिनचर्या क्या थी, सारा दिन बाबा नशे में रहते थे, स्मृति में रहते थे, सेवा में रहते थे, याद में रहते थे, परोपकार में रहते थे, यज्ञ सेवा में रहते थे, कभी नहीं सुना कि बाबा किसी इंद्रिय के कभी वशीभूत हुए। और बाबा अपना दरबार लगाते थे, रोज अपनी इंद्रियों से पूछते थे कि मन आज तुम कहाँ गए, आज तुमने क्या खुराफात की, क्यों की, आँख आज तुमने ये क्या किया। बाबा तो ज्ञान में आने से पहले से ये सब करते थे, इतना लंबे काल का बाबा का अभ्यास था। हमने मान लीजिए एक दिन ऐसा कर लिया, हम बड़े खुश हो गए, आज तो हमने बाबा की श्रीमत का पालन किया, लेकिन एक दिन से क्या होगा, बाबा ने कितने बरस किया। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास काम में आएगा, एक काल नहीं, दो काल नहीं, बहुत काल। तुम प्रतिदिन प्रति क्षण अपने मन की चेकिंग करें, बुद्धि को देखें, उसका निर्णय ठीक है, कोई पुराना संस्कार जागृत तो नहीं हो रहा है। तो ये सूक्ष्म इंद्रियां, और जब सूक्ष्म नियंत्रण में आ जाती हैं तो स्थूल तो नियंत्रण में आ ही जाती। अगर मन वश में हो गया तो आंख धोखा दे ही नहीं सकती, कान धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमने मन को कंट्रोलिंग पावर में रखा है। और राजा वही जिसके पास रूलिंग पावर हो और कंट्रोलिंग पावर, अगर वो रूल ही नहीं कर सकता, कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो वो राजा कैसे बनेगा। उसमें तो गुलामी के संस्कार, दास के संस्कार, और जो दास है वो हमेशा उदास रहेगा, कभी उसे आत्मग्लानी होगी, कभी पश्चाताप होगा, कभी अफसोस होगा। और बाबा ने कहा था कि जो सदा खुश रहेंगे वो धर्मराजपुरी को क्रॉस कर जाएंगे, और जो कभी कभी खुश रहेंगे उन्हें रुकना पड़ेगा। तो पहला कारण साइड सीन यात्रा में, दूसरा अवरोध क्या आता है, कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं, हाईवे हाईवे जाते जाते गलती से बोर्ड नहीं देखते और किसी गली में भटक जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं हाईवे छोड़ के गलियों में भटकते हैं, और भटकते भटकते जब परेशान हो जाते हैं, कईयों से पूछते हैं भाई किधर जाएं, हमको तो दिल्ली जाना है, तो वो कहते हैं अरे भाई तुम तो गली में मुड़ गए, तुमको फिर हाईवे पे जाना है, तो कहाँ जाएं, वो कहते हैं राइट मुड़ो, हम कहते हैं हम राइट से तो आए ही हैं, तो कहते हैं फिर वापस राइट जाओ, तो आधा घंटा घूम घुमा करके हम फिर हाईवे पकड़ते हैं, लेकिन आधा घंटा तो गया ना। तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में ये गलियां कौन सी हैं, क्यों, क्या, कैसे, किसने किया, कब किया, क्यों किया, ऐसे कैसे हो गया, कोई बात आती है, कोई घटना घटती है, कोई समाचार मिलता है, तुम अंदर में कितने आकलन करने शुरू कर देते हैं, ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा किसने किया होगा, क्यों किया होगा, कब किया होगा, चलो पता करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, उससे पूछते हैं भाई ये तुमने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया। जैसे हम कोई CID वाले हों, जैसे हमें कोई खोजबीन करने की जिम्मेवारी मिली हुई हो, बातें तो आएंगी। बाबा ने कहा बातें क्यों आती हैं, नंबर एक आपकी अवस्था की जांच करने के लिए, नंबर दो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, और नंबर तीन आपकी धारणा की चेकिंग करने के लिए। बातें रियल नहीं होती हैं, आप उनको रियल समझ लेते हो, और फिर हम क्या करते हैं, उन बातों का विस्तार करते हैं, खूब विस्तार करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, तीसरे को सुनाते हैं, अपने मन में भी बार बार उसको रिपीट करते हैं, हाथों से कर्म कर रहे हैं, मन में बात घूम रही है, रास्ते चल रहे हैं, मन में बात घूम रही है, एक दिन दो दिन घूमती रही। और फिर क्या करते हैं, जब योग नहीं लगता, जब मुरली अंदर नहीं जाती, खुशी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तब हम कहते हैं बाबा मन बहुत परेशान है, इस बात को आप ले लो ना, और फिर हम उस बात को बिंदु लगाते। तो दो दिन गलियों में भटके, उसके बाद हाईवे पे आए, तो दो दिन तो गए ना, अगर बात आते ही हम उसको फुल स्टॉप लगा देते, क्योंकि बाबा ने कहा है बात को नहीं देखो बाप को देखो, बातों को आते ही फुल स्टॉप लगाओ, कारण में मत जाओ, निवारण सोचो, समस्या को मत सोचो समाधान को सोचो। बात तो आ गई पर अब मुझे इसका समाधान खोजना है। जब हम समाधान खोजते हैं तो हमें ज्ञान की पॉइंट याद आती है, बाबा याद आता है, वो हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। जब हम समस्या को सोचते हैं तो हम गलियों में चले जाते हैं, जब हम कारण को सोचते हैं तो गलियों में जाते हैं, निवारण को सोचते हैं तो यात्रा आगे बढ़ती है, फुल स्टॉप लगाते हैं तो यात्रा आगे बढ़ती है। और जब बाप को याद करते हैं या आई हुई बात को पेपर समझ करके और उससे कोई पाठ सीखते हैं तो भी यात्रा आगे बढ़ती। तो दूसरा कारण है गलियों में उलझना, हमें हाईवे नहीं छोड़ना, छोटी छोटी बातों में नहीं जाना, सारहीन बातें, असार बातें, बेकार बातें, यात्रा में अवरोध का। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर कौन सी? स्पीड ब्रेकर हैं दूसरों को देखना और दूसरों के बदलने की कामना करना, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, ये ऐसे करता है मुझे भी ऐसे करना है। किसी से पूछो तुमने ऐसे किया, अरे फलाने ने भी तो ऐसे किया था ना, मैंने भी कर लिया। भाई फलाना तुम्हारा बॉस है क्या? फलाना तुम्हारा रोल मॉडल है क्या? फॉलो किसको करना है? भाई बहनों को फॉलो करना है या फॉलो फादर करना है? बाबा ने कहा साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को देखो और निराकारी स्थिति में शिव बाप को फॉलो करो, दोनों बाप को फॉलो करना है। कुछ बातों में बाबा बड़े भाई बहनों को भी दादियों को भी फॉलो करने की बातें कहते हैं। हम अपनी दादियों को देखते हैं, जो निमित्त है उनको देखते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि 100% उनको देखते हैं। 100% तो हमको ब्रह्मा बाप को और शिव बाप को ही देखना है। हाँ, गुण तो हमें सारे परिवार के ही देखने, किसी में कोई भी गुण दिखाई दिया लेकिन किसी को हम पूरी तरह ही नकल करने लग पड़े तो हमारी यात्रा रुक जाती। और कई बार तो हम ऐसे कहते हैं देखो फलाना महारथी है, वो भी ऐसे कर रहा था, फलाने महारथी को भी मैंने ऐसे करते देखा। मान लीजिए किसी महारथी ने कभी थोड़ा क्रोध कर लिया तो हम कहते हैं वो तो महारथी है, वो तो क्लास कराता है, वो तो बहुत बड़ा है, वो भी क्रोध करता है, मैंने किया तो क्या हो गया। इस पे बाबा ने कहा था कि महारथी का तो पुण्य का खाता बहुत जमा है और उसने थोड़ा सा क्रोध किया तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा सा माइनस होगा, आपका तो पुण्य का खाता जमा ही नहीं। और आप उसकी अच्छी बातों को तो फॉलो नहीं कर रहे हो, जो उसमें 99 अच्छी बातें और उसने थोड़ा किया उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपके खाते का क्या होगा। इसलिए हर व्यक्ति की अवस्था अपनी, हरेक का जमा खाता अपना है, हरेक का पुण्य का खाता अपना अपना है। अगर हम किसी की कमी देखते हैं उसके गुण भी तो देखें, गुण तो उसमें 99 वो तो हमने देखे नहीं, और 99 गुणों को देखते तो एक कमी पे नजर ही ना जाती। इसलिए कभी समय मिले और पढ़ना लिखना आता हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, और आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं लौकिक या अलौकिक, उनके गुण लिखो कॉपी पे। अमुक में क्या गुण है, अमुक में क्या गुण है, अमुक में क्या गुण है, हर एक में कई कई गुण मिलेंगे। और अगर हमें ऐसे करने की आदत पड़ जाएगी तो हमारी नज़र गुणों पे ही जाएगी। हम दूसरों को देखेंगे लेकिन गुणों को देखेंगे, और फॉलो बाप और दादा को करेंगे। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरों के परिवर्तन की कामना करते हैं, इसलिए हमारी यात्रा रुक जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। वो बदलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उसका बदलना हमारे हाथ में तो नहीं है ना। मतलब मेरे घर के बाकी लोग ज्ञान में चलेंगे तो मैं आगे ज्ञान में चलूंगा, मेरी पत्नी मुझे सहयोग देगी तो मैं ज्ञान में आगे तेज दौड़ सकूंगा, मेरा पति ज्ञान में चलेगा उसके बाद तो मैं रोज क्लास कर सकूंगी, मुरली पढ़ सकूंगी, मेरा बेटा मुझे कुछ सहयोग दे तो मैं मधुबन जा सकूंगी। कई प्रकार की हम कंडीशन लगाते हैं। घर के सारे लोग शुद्ध अन्न खाना शुरू कर दें तो मैं शुद्ध अन्न खा सकती हूँ, घर के सब लोग सुबह सुबह उठें तो मैं अमृत वेला करूं, सब सोए रहते हैं मेरा अकेले का उठने को मन नहीं करता। कई तरह के हम कंडीशन लगाते, परिवार, समाज, सराउंडिंग के लोग, या फिर सेवा केंद्र के लोग, या मेरी टीचर ऐसी हो तो मेरा पुरुषार्थ तेज हो ना, वो बदलते हैं और ना हमारी यात्रा आगे बढ़ती, हम इंतजार में ही रह जाते हैं। बाबा ने कहा संगम युग में किसी का भी इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो, इंतजार नहीं करो, समय का इंतजार नहीं करो, व्यक्ति का इंतजार नहीं करो, प्रकृति का इंतजार नहीं करो। सर्दी खत्म हो जाएगी तब हम तेज पुरुषार्थ करेंगे, गर्मी खत्म होगी तब हम तेज पुरुषार्थ करेंगे, अभी तो बहुत ठंडी है कुछ नहीं हो सकता। किसी को मत बदलो, खुद को बदल लो। अगर तेज दौड़ना है तो केवल अपने बदलने के रास्ते निकालो। जैसे पानी को देखा है ना, पानी के रास्ते में चट्टान आती है, पानी कभी नहीं कहता चट्टान हट फिर मैं बहूंगा, चट्टान हट, चट्टान तो हटेगी नहीं, कि चट्टान को कोई काम ही नहीं है अवरोध खड़ा करने के सिवाय, उसका तो जन्मजात संस्कार है रास्ते रोकना। और पानी का संस्कार है बहना, तो वो क्या करता है, वो बाजू में से निकलता है। अगर चट्टान के नीचे थोड़ा भी रास्ता है तो चट्टान के नीचे से निकलता है, और अगर चट्टान छोटी है तो उसके ऊपर से निकलता है, और उसको भी घिस घिस करके गोल पत्थर बना देता है। कहता है दुनिया में लोग कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और पानी कहता है जो मेरे रास्ते में आएगा वो पूजनीय बन जाएगा। तो वो जो चट्टान है वो देखो गोल गोल पत्थर बन जाती है, पूजनीय बन जाती है, उसको भी लोग शालीग्राम बना करके घरों में रख करके उसकी पूजा करते। तो जो मेरे मार्ग में आए मैं उसको भी पूजनीय बना दूँ, ना कि उसको देख करके खुद के पूज्य बनने के मार्ग को धीमा कर दूँ, खड़ा कर दूँ, नहीं। अगला अवरोध कौन सा है, अगला अवरोध है मार्ग में जाम लग जाता है, कई गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं, जाम लग जाता है, हमें खड़े रहना पड़ता है। तो ये जाम कौन सा है आध्यात्मिक यात्रा में? यहां पास्ट की बातें जम जाती हैं, पुरानी और पराई बातें, उनका जमावड़ा, इतनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं, इसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने ये कहा था, मैंने ये देखा था, आज से 20 साल पहले की बातें, 10 साल पहले की बातें। बाबा तो कहते हैं रात गई और बात गई, दादी कहती थी पुरानी और पराई बातें, पराई माना दूसरों की और पुरानी माना 1 सेकंड पहले की बात भी पुरानी बात है, उनको खत्म कर। लेकिन अगर हमने बातों का जमावड़ा कर रखा है, तो बाबा ने कहा जहां बात है वहां बाप ने, और बातों का भी बोझ होता है। ऐसे तो हमारा मन बहुत हल्का है, तराजू में तोलो तो उसमें कोई वजन ही नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं मन बहुत भारी है, तो ये बातों का ही तो भार होता है, बातों का ही तो बोझ होता है। आज के जमाने में कोई बोझ उठाना नहीं चाहता, कहीं सफर में भी जाता है तो किसी को साथ ले जाता है, भाई मेरा बोझ उठा लेना, नौकर को, किसी सहयोगी को, मेरी अटैची उठा लेना। और अटैचियों को भी हमने पहिए लगवा लिए ताकि वो बोझ उठाना ना पड़े। लेकिन मन वाले बोझ के लिए तो कोई साथी ही नहीं मिलता, कोई नौकर मन का बोझ उठाएगा क्या, कोई सहयोगी मन का बोझ उठाएगा क्या? और ये बातों का बोझ इतना भयंकर होता है कि जिस दिन ये आउटबर्स्ट करता है, उस दिन बड़े भयंकर परिणाम होते हैं, क्योंकि यहाँ इकट्ठी हो गई ना, फिर एकदम बम फटता है, जैसे कुकर में भाप इकट्ठी हो गई, फिर एकदम सीटी बजती है, और कई बार तो सीटी में कोई अवरोध हो तो कुकर ही पूरा उछल जाता है। तो ऐसा भावनाओं का आउटबर्स्ट ना हो, इसके लिए मन को खाली रखना है, मन में परत दर परत बातें इकट्ठी नहीं करनी। कई बार हम कहते हैं इस बात को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, इतनी हीरे तुल्य है क्या? है वो बिल्कुल बिल्कुल कोड़ी तुल्य बात, लेकिन चूंकि हमें बदला लेना है, हमें नफरत में रहना है, तो हम क्या करते हैं, कोड़ी तुल्य बातों को जमा जमा करके रखते जाते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार वो एक यात्रा पे जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो दूर से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आ रहा था, और वो अपनी शांत गंभीर चाल से चलते जा रहे थे। वो व्यक्ति बिल्कुल नजदीक आया और उन्होंने महात्मा बुद्ध के मुख पर आते ही थूक दिया, और जैसे ही उसने थूका, महात्मा बुद्ध ने कहा कहिए, कुछ और भी कहना है तो कह लीजिए। लेकिन व्यक्ति तुरंत वापस चला गया। तो महात्मा बुद्ध के साथ आनंद थे, उसने कहा भंते इसने कुछ बोला नहीं, उसने तो इतना जघन्य अपराध किया है, अगर आप कहें तो मैं इसके पीछे जाऊं, इसको पकड़ूं और इसको सजा दूं। बुद्ध ने कहा नहीं, यात्रा पुनः चालू हो गई। अगली सुबह हुई, सूर्योदय हुआ और देखा वही व्यक्ति फिर से दौड़ा आ रहा है, और आते ही उसने महात्मा बुद्ध के चरण पकड़े और अपने आंसुओं से उसके चरण धो डाले। फिर बुद्ध ने कहा, कुछ और भी कहना है तो कह लीजिए। और वो बोला नहीं, वो आंसुओं से चरण धो करके चला गया। तो बुद्ध आनंद ने कहा, मुझे ये पहली समझ में नहीं आई। तो बुद्ध ने कहा, देखो कई बार व्यक्ति के भीतर कोई नकारात्मक भाव इतना अधिक भर जाता है कि वो उसे बोल करके प्रकट नहीं करता, सीधा एक्शन से प्रकट करता है। जैसे किसी के भीतर बहुत गुस्सा आया हुआ, बहुत गुस्सा बढ़ जाए तो वो क्या करता है, बोलेगा नहीं, सीधा तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, अति हो गई, घृणा भर गई, रोष भर गया, तो वो एक्शन पे आता है। तो बुद्ध ने कहा कि इसको लोगों ने भड़काया था कि बुद्ध ऐसे करता है, ऐसे करता है, बुद्ध बहुत खराब है, बुद्ध की शिक्षाएं बहुत खराब है। तो कई दिन से इसके भीतर मेरे लिए नफरत भरी पड़ी थी। अब नफरत को प्रकट करने का इसके पास और तो कोई तरीका था नहीं, तो इसने एक्शन से वो नफरत प्रकट की। नफरत प्रकट की, ये खाली हो गया। और जब मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, मैंने इसको प्यार से पूछा, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी, तो इसको पश्चाताप हुआ कि ये तो अच्छा व्यक्ति है, मैंने गलत किया। अब वो पश्चाताप भी इसके भीतर इतना भर गया, इतना भर गया, अब ये माफी कैसे मांगे, पश्चाताप को प्रकट कैसे करी, उसके लिए भी इसके पास शब्द नहीं थे। तो वो भी इसने एक्शन से प्रकट किया, पांव पकड़े, आंसुओं से चरण धोए, अपनी गलती की माफी मांगी, अपनी आत्मग्लानी पश्चाताप को प्रकट किया और चला गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां बहुत भर गए। तो बहुत बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं, या एक ही बात को जब बहुत बार सोचा जाता है, तो वो बात किसी न किसी नेगेटिव प्रभाव को इतना अधिक भर देती है कि वो एक्शन के रूप में प्रकट होता है। फिर लोग कहते हैं कि बात तो छोटी सी थी, जैसे आप समाचारों में सुनते हो कि छोटी सी बात पे किसी ने हत्या कर दी, छोटी सी बात पे किसी ने आग लगा दी, छोटी सी बात पे किसी ने किसी को पानी में धक्का दे दिया, अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना अपराध कर दिया। वो बात उस समय तो छोटी थी, लेकिन लंबे काल से मन में इकट्ठी हुई पड़ी थी। तो अगर हम लंबे काल तक जमा रखेंगे तो क्या होगा, हम उन भावों की गिरफ्त में आ जाएंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे, वो हम पे हावी रहेंगे, हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ पे वो भाव हमेशा हावी रहेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। और बातें हम इस तरह भी करते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बात रूपी गुड़िया को लेते हैं, उसको सजाते हैं और उसके आकार को भी बड़ा करते जाते हैं, फिर उसको भोग लगाते हैं और फिर पंडे पुजारियों को वो भोग बांटते हैं, मतलब बात को बढ़ाते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, एक बड़ी मंडली बनाते हैं, और जैसे लोग बाद में उसको पानी में बहा देते हैं तो बाद में उस बात को ज्ञान सागर में बहाना ही पड़ता है। तो इतने दिन के बाद गुड़िया को बहाया, पहले दिन ही ना बात रूपी गुड़िया को बहा देते, इतनी मेहनत ना लगती। तो बातों को बड़ा करना ये भी जाम है, हमें बड़ी बात को छोटा करना है। बात को सोच सोच के बढ़ाओ नहीं, उसकी तो आदत ऐसी, अगर वो ऐसे कर देता तो अरे उसने किया ही नहीं, तुम बढ़ा रही हो। आज उसने एक शब्द बोला, कल वो मार भी देगा। ये देखो, ये हम बढ़ा रही, हमें तो बात को छोटा करना था। उसने एक गलत शब्द बोला, अब हमें तो छोटा करना था कि नहीं वो एक अच्छी आत्मा है। ये उसका आखिरी गलत शब्द था, आज के बाद वो नहीं बोलेगा। हमें तो शुभ भावना रखनी थी, लेकिन हम तो बढ़ा रही हैं। तो ये जाम, पास्ट की बातें या बातों को नमक में रच लगाना, ये भी यात्रा में अवरोध है। पांचवा अवरोध है, कहीं सड़क टूटी है, गड्ढा है, या कोई बरसात के कारण पहाड़ फिसला, पत्थर गिर गया, वृक्ष टूट के रास्ते में आ गया, तो भी हमें रुकना पड़ता है। तो ये अवरोध कौन से हैं? चलते चलते कई बार बीमारी आ जाती और वो बीमारी हम पे हावी हो जाती। हमें लगता है अब जी के क्या करना है, अब तो ये बीमारी पुरुषार्थ करने नहीं देगी, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बीमारी तो छोटी थी, सोच सोच के हम उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये तो बीमार है, आज तक तो मैं लोगों को नशे से कहता था, मैंने एक गोली भी नहीं खाई, अब देखो मुझे गोलियां खानी पड़ेंगी, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कई तरह की बातें हमारे मन में आ जाती हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे शरीर है तो बीमारी भी आएगी। कलयुग ही शरीर है, अंतिम शरीर है, जड़जड़ी भूत शरीर है। जैसे दुनिया जड़जड़ी भूत है, कल्प वृक्ष जड़जड़ी भूत है, शरीर भी जड़जड़ी भूत है। छोटी आयु में भी आ जाएगी, बड़ी आयु में तो आती ही। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है, कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करो। और बाबा ने ये भी कहा है कि अगर सच्चे साहिब को राजी किया है तो कभी भी कर्म भोग सेवा में बाधक नहीं बनेगा। कर्म भोग अपना काम करेगा और आप अपनी सेवा करते रहेंगे। इस यज्ञ में आप शुरू से देख लीजिए, बाबा को खांसी थी, शुगर थी, मम्मा को भी बीमारी थी, बड़ी दीदी को भी ट्यूमर था। बाबा कहते हैं बच्चे ये भोगना नहीं है, बड़ी दीदी को बाबा ने कहा था ये भोगना नहीं है, वो बिस्तर पे जब लेटे थे, ये नई दुनिया की योजना है। शांतामणि दादी के लिए बाबा ने बोला था, जब वो बिस्तर पे लेटी थी, बच्चे विष्णु की तरह से शेष सैया पे लेटे गीता ज्ञान का रमण, गीता ज्ञान में रमण करते हर्षित हो रहे हो ना, तो बीमारी भी वरदान बन सकती है। एक तो बीमारी वैराग्य दिलाती है, एक बीमारी बाबा की याद दिलाती है, एक बीमारी पुरुषार्थ को भी तीव्रता देती है, क्योंकि लगता है कि अब नया शरीर पहने और इस पुराने को छोड़ें। तो बीमारी यात्रा में अवरोध ना बने। कई बार अचानक धन की कमी आ जाती है, तब भी मन में संकल्प चलने लगते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, हम तो बाबा के बच्चे थे, हमारे हाथ में अब धन नहीं है, अब हम क्या कर पाएंगे। किसी भी कारण से नौकरी ऊपर नीचे हो गई, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, बाबा ने कहा है बच्चे यहाँ तो धनपतियों का धन ऊपर नीचे हो जाता है, आपकी तो बात ही क्या, यहाँ तो करोड़पति भी रोड पे आ जाते, यहाँ तो नवाबों के बच्चे भी रिक्शा चला रहे हैं, यहाँ तो राजाओं के बच्चे भी आपको छोटी मोटी नौकरी करते मिल जाएंगे। तो इस कलयुग में है ही काला धन, उसकी कीमत भी क्या है। इसलिए बाबा ने गारंटी ले रखी है कि बाबा अपने बच्चों को दाल रोटी जरूर खिलाएगा, फिर आप चिंता क्यों करते हो। इसलिए अगर धन की कमी हो गई तो अच्छा हुआ, फिजूल खर्चे नहीं होंगे। धन के कारण भी कई पाप होते हैं, वो पाप नहीं होंगे। धन भी कई बार अलबेलापन ले आता है, वो नहीं होगा। कई बार कोई मित्र संबंधी या तो हमें कष्ट देता है या उसके ऊपर कोई कष्ट आया तो उसको देख करके हम दुखी हो जाती। तो अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो बाबा ने कहा बच्चे हिसाब चुकतू हो रही, अच्छा है धर्मराजपुरी में आपको सजा नहीं खानी पड़ेगी, यहीं चुकतू कर लो। और अगर उसके ऊपर कोई कष्ट आया है तो बाबा ने यह भी कहा है किसी के दुख में दुखी होके आप कभी उसे सुखी नहीं कर सकेंगे। आपको दुखी नहीं होना लेकिन आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है ताकि आप उसको कुछ शुभ भावनाएं दे सकें, कुछ सकाश दे सकें, कुछ मदद कर सकें। तो दुखी को देख करके ठहरना नहीं है लेकिन अपनी यात्रा को अधिक तीव्र करना है। तो ये अवरोध, एक और लास्ट अवरोध है, हम खुद ही गति धीमी कर लेते हैं गाड़ी की तो भी समय पे नहीं पहुंचता, उसकी हमने शुरू में भी चर्चा की थी। सोचना और करना, इसमें गैप, मतलब हम गाड़ी को धीमे चला रहे हैं। बाबा ने कहा किया, सोचा और किया, मतलब तुरंत दान महापुण्य, और नहीं तो वो केवल पुण्य रह जाता है, महापुण्य नहीं होता है। बाबा ने कहा था जैसे मान लीजिए कोई भोजन बनाता है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, गरम गरम भोजन है, आज बनाया उसको कल खाएगा तो क्या होगा, भोजन का स्वाद भी कम होगा और वो पौष्टिक भी नहीं रहेगा, उसकी पौष्टिकता में भी अंतर पड़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब हम तुरंत करते हैं तो उसका फायदा अधिक मिलता है, अगर हम बीच में गैप डाल देते हैं तो फायदा कम मिलता है। इसलिए बेशक एक बात सोचो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करो। हम कई बातें सोचते हैं फिर उलझ जाते हैं कि पहले कौन सी करें, पहले कौन सी करें, पहले कौन सी करें, और इस उपापो हमें कोई भी नहीं कर पाते। जो ब्रेन है ना ये इंजन है, मतलब हमारी सोचने की शक्ति इंजन है, और जो शरीर इंद्रियां है वो उसके पीछे के कंपार्टमेंट है, जैसे ट्रेन में होता है। अब इंजन की स्पीड हो 100 की और कंपार्टमेंट 25 से चल रही हो तो क्या होगा गाड़ी का, वो तो अलग हो जाएंगे कंपार्टमेंट। तो हम इतनी बातें सोचें और उनको साकार रूप दे ना सकें तो तनाव आएगा। इसलिए एक ही बात सोचें और उसको कर्म में लाएं, एक ही योजना बनाएं उसको कर्म में लाएं, एक ही प्लानिंग करें उसको कर्म में लाएं, वो पूरी हो गई फिर दूसरी योजना बनाएं। तो सोचना और करना दोनों एक समान हो, तो ये 6 बातें हैं। पहली बात थी साइड सीन, दूसरी बात थी गलियों में भटकना, तीसरी बात थी स्पीड ब्रेकर, चौथी बात थी जाम लगना, पांचवी बात थी सड़क में दरारें, गड्ढे, चट्टान या वृक्ष का गिरना, और छठी बात थी गाड़ी की स्पीड 40 पे ही रखना। हाईवे पे तो हम 100 पे दौड़ सकते हैं। तो इन 6 बातों के ऊपर अटेंशन देंगे तो हमारा पुरुषार्थ निरंतर भी रहेगा, तीव्र भी रहेगा, एक रस भी रहेगा। ओम शांति।
समय के ये जीवन हमारा, कर्मों में देखे तुझको ये जग सारा। तेरी प्यारी पलकों में हर पल ही पल्ला, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा।
अब तुम्हें